यह 1992 का प्रातःकाल है। रिकॉर्ड चला है कि मैं रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, मनुआ जीवन अमोल है कौड़ी बदले जाए रे। बच्चों को ओमकार से तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं कौन, मेरे ये आर्गन्स। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, मैं, परंतु मैं परमात्मा हूँ। माना परम आत्मा, वो है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। परमात्मा मन परे से परे रहने वाला, जहां तक कोई की पहुंच हो न सके। सच ऊंचे से ऊंचा करतार, उस ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच सकता। माना परमात्मा, कहते हैं मैं शरीर का मालिक नहीं हूं। जो सबसे परे है वो कहते हैं मैं शरीर का मालिक नहीं हूं, बाकी सब शरीर के मालिक हैं। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर कैसे हूं, ये भी समझने की बातें हैं। क्रिएटर कैसे हूं, परे से परे आत्मा, वो तो सुप्रीम सोल जो सबसे परे रहती है, उसकी परिधि से बाहर कोई भी नहीं। उसकी परिधि में सब हैं, वो किसी के घेरे में नहीं है, सबसे परे है। लेकिन वो क्रिएटर कैसे, उसका अपना शरीर नहीं है, फिर क्रिएटर कैसे। क्रिएटर माना क्रिएट करने वाला, रचयिता, रचना रचने वाला, किस चीज की रचना रचता है, आत्मा की। आत्मा है तो अनादि है, वो तो रची नहीं जाती। परमात्मा भी अनादि है, आत्माएं तो है ही है, परमात्मा भी है ही है, फिर रचना किसकी। तो सुप्रीम सोल की बात नहीं है। वो सुप्रीम सोल जब तक ज्योति बिंदु है तब तक क्रिएटर नहीं। क्रिएटर तब बनता है जब शरीर में प्रवेश करता है। डायरेक्शन भी सस्ती रूपी रंगमंच पर दिए जाते हैं। परमधाम की स्टेज में तो डायरेक्शन देने की बात ही नहीं। जैसे कहते हैं कि धर्म पिताओं को परमात्मा ने भेजा, तो क्या परमधाम में डायरेक्शन दिया जाता है कि जाओ, तो ये कहां की बात है? यह भी यहाँ की बात है, ब्राह्मणों की संग निधि दुनिया में अभी परमपिता परमात्मा डायरेक्टर का कार्य कर रहा है प्रैक्टिकल में, और जो भी धर्म पिताएं, क्योंकि धर्म पिताएं तीन प्रकार से, एक तो द्वापर से आने वाली, डायरेक्ट आने वाली परमधाम से उतरने वाली आत्माएं, जो अपने धर्म की पक्की होती है, कभी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरे वो धर्म पिताएं, बल्कि उनको उन धर्म की माताएं कहें, आधार, जिनमें वो ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है, तो वो हो गए आधारभूत धर्म पिताएं। और उन आधारभूत धर्म पिताओं को भी जन्म देने वाले, शारीरिक जन्म देने वाले बीज, वो हो गए साकार बीज। उन धर्मों के, तो ये सब धर्म पिताएं हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? बीज रूप साकार धर्म पिताएं, आधार मूर्त अथवा निराकारी धर्म पिताएं, जिनकी निराकारी शेष दिखाई जाती है चित्रों में, जो डायरेक्ट परमधाम के ऊपर से नीचे आती है द्वापर कलयुग में, पहले कौन से प्रत्यक्ष होंगे? जो ऊपर से आते हैं वो तो अपने धर्म के पक्के हैं, वो ब्राह्मण बनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अपने धर्म के पक्के हैं, उनके तो जन्म ही बहुत कम है। जो कन्वर्ट होते हैं वो भारतवासी, जो सत्युग त्रेता से जन्म लेना शुरू करते हैं, तो उनमें दो प्रकार के, एक आधार मूर्त जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए, और दूसरे इन जड़ों को भी जन्म देने वाले बीज, साकार बीज। संगम युग में उनकी परमात्मा की याद करने के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर निराकारी स्टेज बनती है। तो वो डायरेक्टर किनका है? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु जब प्रवेश करता है साकार शरीर में, तो डायरेक्शन देता है प्रैक्टिकल में, संगम युग में। एक्स वाई जेड सबको डायरेक्शन नहीं देगा, जो ऊंचा होगा वो ऊंचों को डायरेक्शन देगा। ऐसे तो इशारा सबको है, लेकिन डायरेक्ट कैच करने वाले थोड़े होते। तो वो डायरेक्टर कोई परमधाम में बैठ करके ये नहीं कहता है कि जाओ पैगाम दो, ये भी शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की संगम निधि दुनिया में, जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं, जो दूसरे दूसरे धर्म के आधार मूर्त हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण बनने के बावजूद भी वो अपने विपरीत धर्म की वृत्ति को जहर सहज ही नहीं छोड़ पाते। और जब नहीं छोड़ पाते हैं तो परमात्मा की ग्लानी पर उतर आते हैं। तो जो ऐसे बीज हैं या आधार हैं, उनके लिए ये गायन है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो तो उन सन्यासियों के लिए लगा दिया है, उन सन्यासियों के लिए तो कोई ठौर की बात ही नहीं। ये ब्राह्मणों की संघ निधि दुनिया में जो नया संगठन तैयार होने वाला है, स्वर्गीय संगठन जो भारत में तैयार होता है, एक तरफ दुनिया में कयामत होती है, हाहाकार होता है, और दूसरी तरफ भारत में स्वर्ग की राजधानी स्थापन होती है, तो उस स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के पीरियड में वो विपरीत धर्म के जो धर्म पिताएं हैं वो उस थौर पर रह करके ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ग्लानि के निमित्त बन पड़े। इसलिए उनको अपने अपने धर्म खंडों में जाकर के सेवा का कार्य करना पड़े। तो अल्लाह मियां ने भेजा पैगंबरों को, तो परमधाम में बैठ करके कोई भेजने की बात नहीं है। ये कहां की बात हुई? ये इसी साकार शक्ति पर जब शूटिंग का पीरियड होता है तो परमपिता परमात्मा साकार रूप में इस शक्ति पर उदय होकर के विशेष विशेष आत्माओं को विशेष विशेष धर्म खंडों में भेजने के निमित्त बनता है। इसलिए वो डायरेक्टर दिए, और फिर एक्टर कहते हूं वो सुप्रीम एक्टर भी बनता है, जिसको कहते हैं हीरो, क्योंकि वो हीरा है। सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया, शिवलिंग की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की, उसमें बीच में हीरा दिखाया गया। तो हीरा कौन है, लिंग कौन है? लिंग बड़ा दिखाया गया, ज्योति का लिंग, और हीरा छोटा सा दिखाया गया उसमें। तो लिंग किसकी यादगार है और हीरा किसकी यादगार है? लिंग है उस साकार स्वरूप की यादगार, जिसमें प्रवेश करके वो ज्योति बिंदु शिव संसार में प्रत्यक्ष होता है गॉड फादर के रूप में। तो हीरा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, और लिंग साकार स्वरूप जो मनुष्य शक्ति का पिता है। तो वो ज्योति बिंदु शिव उस साकार स्वरूप में प्रवेश करके मुख्य एक्टर भी बनता है। मुख्य एक्टर कहा जाता है हीरो को, अर्थात नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा। वो नारायण नहीं जो सत्युग में कम कलाओं वाले होंगे, वो नारायण जो कलाओं से भी परे का पार्ट बजाने वाला है। कलातीत कल्पांत सारी कहते हैं, कलाओं से भी परे, चढ़ती ही चढ़ती कला। जैसे सत्युग में जो नारायण होंगे राधा कृष्ण से लेकर के आठवां नारायण तक, वो सब उतरती कला के होंगे। लेकिन जो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाली आत्मा है वो चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, अगर उसकी चढ़ती कला होना बंद हो जाए तो सर्व का भला होना भी बंद हो जाए। तो क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कैसे हूं, ये भी समझने की बातें हैं। मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही समझ लेते हैं कि वो ज्योति बिंदु क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, तो वास्तव में समझते नहीं है। वो समझ लेते हैं कि बिंदु ही क्रिएटर है, बिंदु ही मुख्य एक्टर है, लेकिन बिंदु कैसे होगा, वो समझने की बात। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर, जरूर हूं। ये जरूर शब्द क्यों लगाया, इसमें भी कोई शक है क्या? परमात्मा स्वर्ग का रचयिता नहीं होगा क्या? मनुष्य आत्मा होंगी? ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग की रचना करेंगे? नहीं, स्वर्ग की रचना, सुख की दुनिया की रचना सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। हाँ, नंबर वार सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन रचयिता बनने का टाइटल कोई नहीं ले सकता। क्योंकि 63 जन्म में महान से महान मनुष्य आत्माएं शक्ति पर आई, पैगंबर आए, धर्म पिताएं आए, और दुनिया दुख की ओर जाती रही। उनके आने के बाद दुनिया और ही नरक बनती गई। तो कोई भी मनुष्य मात्र A to Z, प्रजापिता से लेकर के 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक भी स्वर्ग का रचयिता कोई हो नहीं सकता। स्वर्ग की रचना सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई कर ही नहीं सकता। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये समझे बैठे हो कि परमात्मा शिव आकर के हमको ब्रह्मा के कंठ से ज्ञान सुना के चले गए, वो साकार का कार्य पूरा हुआ, अब हम स्वर्ग की रचना कर लेंगे, तो कोई भी मनुष्य मात्र स्वर्ग की रचना नहीं कर सकता, सुख की दुनिया नहीं बना सकता। इंचों के सुखधाम और शांति धाम बना सकते हैं, लेकिन असलियत में जो वास्तविकता है, वास्तविक संगठन नई दुनिया का, वो सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई नहीं बना सकता। तो इसलिए बोला, मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूं, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। सतयुग को रचकर ये कार्य और कोई नहीं कर सकता क्या? कि रचना भी रचे और पुरानी रचना का विनाश भी करे, ये सिर्फ मैं ही करता हूं। और धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करेंगे, अपने अपने धर्म की धारणाएं स्थापन कर देंगे मनुष्यों की बुद्धि में, लेकिन पुराने पन का विनाश नहीं करते, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते, पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते। तो जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो या विष का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद, दो बूंद या आधा घड़ा दूध का डाल दिया जाए तो विष ही रहेगा ना। दूध के घड़े में आधा घड़ा विष डाल दिया जाए तो भी विष ही रहेगा। तो जब तक पुराना घड़ा खाली नहीं किया है, पूरी रीत से सफाई नहीं हुई है, तब तक उसमें जो दूध डाला गया वो दूध अपना दूध का कार्य नहीं करेगा, विष का ही कार्य करेगा। तो ऐसे ही इस दुनिया के अंदर अनेक धर्म फैले हुए, उन अनेक धारणाओं का, धर्मों का जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक नए सद्धर्म की स्थापना का कोई फायदा नहीं होगा। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना जरूर हुई, लेकिन ब्राह्मणों की राजाई नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि पुरानेपन का तो विनाश हुआ ही। तो ये परमपिता परमात्मा का ही कार्य है कि स्थापना के साथ साथ विनाश भी कराता है और करता है। मैं करण करावनहार हूं, करणहार के स्वरूप के द्वारा और करावनहार के स्वरूप के द्वारा। करणहार ब्रह्मा के रूप के द्वारा, ब्रह्मा के स्वरूप से कर्मों को करके दिखाया कि तुम बच्चों को ऐसे ऐसे कर्म करना है। वो करावनहार का रूप नहीं है, ब्रह्मा का रूप प्यार भरा रूप है। बच्चों से जोर जबरदस्ती कराने वाला नहीं है, लेकिन करावनहार का पाठ बाद कर, सदगुरु का पाठ है करावनहार का। खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। जैसे भक्ति मार्ग में गायन है, भक्ति में कहते हैं कि गुरु जो डायरेक्शन दे उसको फॉलो करना है, गुरु जो कहता है वो करना है, लेकिन गुरु जो कुछ करता है वो नहीं करना है। तो वो बात कहाँ की है? ये बात वास्तव में ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की है। जबकि परमात्मा आकर के सदगुरु के रूप में लास्ट में सख्त पाठ बजाता है, तो उस समय ये बात क्लियर होती है कि वो कोई कार्य करे या न करे, लेकिन बच्चों से वो अच्छा कार्य करा के जरूर छोड़ेगा। तो करण करावनहार मैं हूं, करणहार पहले और करावनहार बाद में, ये कौन कहते हैं? कहने वाली आत्मा कौन सी है कि मैं करावनहार हूं करणहार हूं? सुप्रीम सोल, कृष्ण की सोल या राम की सोल? करण करावनहार हूं ये कौन कहता है? सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल ही ये कह सकता है कि मैं करणहार हूं तो करावनहार भी, बाकी सब आत्में करने वाली हैं, कराने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती। परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। क्या जब मनुष्य आत्माओं के साथ रहते हो और मनुष्य आत्माओं का संग का रंग लगता है, तब ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो। ब्रह्मांड के मालिक कब हो? जब मेरे साथ रहते हो। मान मैं निसंकल्पी स्टेज में रहता हूं तो मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी निसंकल्पी स्टेज में रहते हैं। वो निसंकल्पी स्टेज कोई ऊपर ही नहीं जाकर के बनेगी। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ही एक ऐसा संगठन संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा जो निसंकल्पी संगठन होगा। तो मैं ब्रह्मांड का भी मालिक हूं, तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। उनको स्वीट होम भी कहते हैं, मीठा घर। जो निसंकल्पी स्टेज है उससे ज्यादा मीठी स्टेज और कोई नहीं हो सकती। न्यारा तो प्यारा, फिर जब षष्ठी रची जाती है तो पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं जो फिर देवता बनते हैं। वो देवता पूरे 84 जन्म लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण के बाद जो सेकंड नारायण होगा वो पूरे 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा, और उसके पीछे उतरने वाली सारी प्रजा जो सेकंड बर्थ में परमधाम से उतर करके जन्म लेगी वो भी पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं होगी, क्योंकि सेकंड नारायण वारसदार किसका बनेगा? राधा कृष्ण का वारिसदार बनेगा ना। राधा कृष्ण वाली सोल ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? ब्रह्मा सरस्वती, दादा लेखराज ओमराजे। तो जो यहाँ सत्यनारायण सत्युग के बने, उनके जो वारसदार बनेंगे, वो वारसदार बनने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की संगनी भी दुनिया में भी तो वारसदार नजर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? शूटिंग पीरियड में भी वो नजर आनी चाहिए। ब्रह्मा ने अपने पीरियड में कौन सा ऐसा ब्राह्मण बच्चा था जिसके ऊपर यज्ञ का सारा कारोबार छोड़ा हुआ था, जिसके ऊपर बाबा को सबसे जास्ती विश्वास था? क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है, लायक बच्चा होता है, उसी के ऊपर बाप अपना सारा कारोबार सौंपता है। तो कौन सा बच्चा था? विश्व किशोर। और कन्याओं माताओं में मम्मा के बाद कौन सी ऐसी कन्या माता है जो बाबा के समय में भी बाबा की नजरों में चढ़ी हुई थी? क्योंकि मुरली में बोला हुआ सबसे जास्ती इन सितारों में खातरी होती है किसकी? कुमारिका की। तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी इस यज्ञ की संभाल करने वाली लाइक में कौन आई? कुमारिका दादी। तो जो यहां वारिसदार बन गया, शूटिंग कर ली, मम्मा बाबा के हृदय में स्थान ले लिया, तो सतयुग में भी जाकर के वो उनके वारिसदार बनेंगे। तो सतयुग में जो राधा कृष्ण के बच्चे बनेंगे, वो डायरेक्ट परमधाम से आकर के वो आत्मा जन्म लेंगे। तो कितना जन्म कम हो जाएगा? एक जन्म कम हो गया, मतलब 83 वर्ष होंगे, 84 जन्म नहीं होंगे। तो उनको पूरे देवता कहेंगे है? जो देवता बनते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, नहीं तो कुछ न कुछ कम जन्म लेंगे। तो जो कुछ न कुछ कम जन्म लेंगे वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे, द्वापर युग से कलयुग तक कन्वर्शन में उनको जरूर जाना पड़े। और दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होकर के आत्माएं जाती हैं, उनमें भारत के भक्ति के संस्कार फिर नहीं रहते। जैसे इब्राहिम ऊपर से नीचे उतरेगा तो जिस व्यक्ति का आधार लेगा वो सेकंड नारायण साबित हो जाता है। क्योंकि वाणी में बोला हुआ ऊंचते ऊंचे बाप को जरूर ऊंचते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े, ऊंचते ऊंचे देवता में। तो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता है परमात्मा शिव, शिव बाबा। और वो ऊंचे से ऊंचे नारायण में प्रवेश करता है। जो डायरेक्ट नर से नारायण बने अथवा ब्राह्मण धर्म का स्थापन करने के लिए कृष्ण वाली सोल, जो सतयुग का फर्स्ट नारायण 16 कला संपूर्ण बनता है उसमें, तो ऊंचे से ऊंचा धर्म पिता ऊंचे से ऊंचे देवता में प्रवेश करता है। तो इससे ये साबित हो गया कि जितने ऊंचा पावर का धर्म पिता होगा उतने ही ऊंचे देवता में प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करेगा। तो इससे साबित हो गया कि सतयुग में 8 धर्म में कन्वर्ट होने वाले 8 नारायण वाली आत्माएं वही द्वापर से लेकर के कलयुग तक कन्वर्ट होती है और उनकी सारी प्रजा कन्वर्ट होती है। देवात्माएं, 8 नारायण वाली देवात्माएं, जो कच्ची देवात्माएं, पक्की अपने धर्म की पक्की नहीं है, पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है, कम जन्म लेते हैं। कम जन्म लेने के कारण उनकी आत्मा में पावर कम होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई परमात्मा से नहीं पढ़ी। आदि से लेकर के प्राइमरी स्तर से लेकर के ऊंचे से ऊंचे स्तर तक की सारी पढ़ाई जो परमात्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पढ़ाता है, विश्व के मालिक बने तक की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ पाई, तो जन्म भी उनके कम हो जाती, आत्मा में पार्ट भी कम हो जाता है, पावर भी कम हो जाती है, कला भी कम हो जाती है। तो सब 84 जन्म नहीं लेते। सत्युग में आते तो बहुत हैं, 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं होंगी जो देव आत्माएं बनती हैं, लेकिन पक्के देवताएं सब नहीं होते, कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवताएं उनमें बहुत हैं। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनकी संख्या सिर्फ कितनी है, 9 लाख बस। हम कह सकते हैं कि हम सत्य के मालिक पूज्य बनते हैं, फिर हम पुजारी बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम देवता बनते हैं, पूज्य बनते हैं, फिर पूज्य से पुजारी बनते हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ये नहीं कह सकती कि हम तो पूज्य बनते हैं, हम तो पुजारी पुजारी बनते हैं। क्यों न वो पूरे पूज्य बनेंगे और न वो पूरे पुजारी बनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बाप से पूरी पढ़ाई नहीं करते। तो बाबा एवर पूज्य है, तो जो एवर पूज्य है जिसमें एवर प्योरिटी है, क्योंकि प्योरिटी के आधार पर ही पूजा होती है। एवर पूज्य का मतलब क्या है, एक सामान्य पूज्य और एक एवर पूज्य, एक सामान्य रूप से प्योर और एक एवर प्योर, अंतर क्या हुआ? कोई ऐसी खास एक्टिविटी है क्या जिससे ये क्लियर हो सके कि ये एवर पूज्य है और ये सामान्य पूज्य है, ये नंबर वार पूज्य है या पवित्र है? क्योंकि बिना कर्तव्य के कभी टाइटल नहीं मिलता, कर्तव्य के आधार पर ही टाइटल दिए जाते हैं। तो अगस्तवाणी में बोला हुआ है कि जिन कर्मेंद्रियों से याद में रह करके कर्म किए हैं वो कर्मेंद्रियां देवताओं की मंदिरों में पूजी जाती हैं। तो परमात्मा शिव का जो निम्न पूजा जाता है उसमें एवर प्योर की बात स्पष्ट हो जाती है। जो कार्य और दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, ये पाठ सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का ही है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सब मनुष्य आत्मा को संग का रंग लगता है। एक जय राम की आत्मा, प्रजापिता की आत्मा से लेकर के 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की महान से महान आत्माओं को भी संग का रंग लगता है और वो नीचे गिरती है। लेकिन एक परमपिता परमात्मा शिव ही ऐसा एक्टर है जिसको संग का रंग नहीं लगता। वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल के समान स्पार्क बजाने वाला है और वो पढ़ाई पढ़ाने वाला है, तो इसलिए उसको कहते हैं एवर पूज्य। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, परमात्मा कोई पुनर्जन्म नहीं देता। पुनर्जन्म लेने का दो हद का भी अर्थ है। हद के अर्थों में पुनर्जन्म लेना माना एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया, जन्म लेना और मृत्यु होना। और ब्राह्मणों की ज्ञान की भाषा में जीना और मरना किसे कहा जाता है? जब तक ज्ञान में निश्चय है तो जैसे जीते हैं, और निश्चय पड़ गया तो जैसे मर गए। तो ये जन्म और मृत्यु का चक्र हर मनुष्य आत्मा का चलता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जिस तन में प्रवेश होकर के ये पार्ट बजाता है। एक रहस्य सदा निश्चय बुद्धि सदा ध्रुव तारा, कभी स्मृतियों के चक्र काटने वाला नहीं। दुनिया की सब लेकिन वो अपनी जगह पर अर्थात निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। वो एक परमपिता परमात्मा है, वो स्वयं और जिस स्वरूप के द्वारा वो पाठ बजाता है। इसलिए शंकर को भी कहा है कि शंकर भी जन्म के चक्र में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ज्योति बिंदु किसी भी जन्म के चक्र में नहीं आता। इसलिए मुरली ने बोल दिया कि दोनों ही जन्म के चक्र में नहीं आते, इसलिए दोनों को मिलाकर एक कर दिया। फिर शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया? क्योंकि सुविधि पुनर्जन्म में नहीं आता तो शंकर भी पुनर्जन्म में नहीं आता। शंकर तो सूक्ष्म बटनवासी, सूक्ष्म बटनवासी पति तो होगा या पावन होगा? पावन होगा। तो सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, तुम्हारा ये अंतिम जन्म। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। 84 लाख जन्म आत्मा के नहीं होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई आत्मा ऐसी भी सशक्त पार्ट बजाने वाली हो जो 84 लाख योनियों की जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी भी उसमें मिली हुई है। बाकी 84 जन्म मनुष्य आत्मा लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं जाती। कुत्ते जैसे कर्म मनुष्य कर सकता है, बाकी कुत्ते का जन्म नहीं लेता। कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी बिता सकता है, बाकी कीड़े मकोड़ों का जन्म नहीं लेता। तो 84 लाख नहीं हो सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बताता हूँ, 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का चक्र नहीं कहा जाता। यानी मनुष्य आत्मा 84 जन्म ले सकती है ज्यादा से ज्यादा, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं लगा सकती, न उसका हिसाब बताया जा सकता। इस 84 के चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते। अब बाप कहते हैं मां एकम याद करो। अगर 84 का चक्र अपना जानना है, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का क्या पार्ट भरा हुआ है, कैसे कैसे तुमने जन्म लिए, कहां कहां किस देश देशांतर में पार्ट बजाया, किस रूप से पार्ट बजाया, श्रेष्ठ पार्ट बजाया या निष्कर्ष पार्ट बजाया, ये 84 जन्मों की अगर हिस्ट्री जानना चाहते हो तो क्या करो? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। क्या एक को याद करो? क्या मुझे एक बिंदु को याद करो? है तो 84 जन्मों के पार्ट खुल जाएंगे। अरे बिंदु तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की भी बिंदु है, सब बिंदु बिंदु है। कैसी कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी बिंदु है, वो भी आत्माएं बिंदु बिंदु है। तो जैसी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जर्म, उनकी आत्मा भी बिंदु, तो कौन से बिंदु को याद करें? माम एकम, कौन से मुझे एक बिंदु को याद करना है? कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चले कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य ढेर की ढेर आत्माएं हैं। कौन से बिंदु को याद करें? माम एकम, मुझे एक को याद करो। तो ये चुनाव कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि मैंने माम एकम उसी एक बिंदु को याद किया, दूसरे बिंदु को याद नहीं किया? जरूर कोई साकार में कर्म करने वाला स्वरूप है, साकार में बोलने वाला स्वरूप है, जो अपने मुख से बोलता है कि मां मैं एकम याद करूं। बिना मुख के तो कह नहीं सकता। तो एक्ट के आधार पर वो बिंदु, एक्ट करने वाला एक्टर पहचाना जा सकता है। मां मैं एकम याद करूं तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, 84 जन्मों की हिस्ट्री तुम्हारी खुल जाएगी। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, अपनी देह को भी भूलो, और इस देह के 84 जन्मों के जो भी संबंधी हैं, एक जन्म के नहीं, एक जन्म में भी अनेक संबंधी होते हैं, नाना चाचा काका ताऊ मामा, जो संबंध जुड़ता है, संबंधों की रचना कर्मेंद्रियों से ली जाती है, वो मन बुद्धि में स्मृति जरूर आती है। तो एक जन्म की स्मृतियां नहीं समाई हुई हैं आत्मा में, अनेक जन्मों की स्मृतियां समाई हुई हैं। तो उन स्मृतियों को क्षीण कैसे करेंगे? और संबंधों को जो 84 जन्म के अनेक प्रकार के संबंधी हैं, उनको कैसे भूलें? क्योंकि बुद्धि का विस्तार जितना जितना होता जाता है, उतना ज्यादा स्मृति भी बढ़ती चली जाती। तो इतनी सारी ढेर स्मृतियों को कैसे कैंसिल किया जाए, कैसे भूला जाए, वो तरीका बता दिया। मां में एकम याद करो, क्यों? क्योंकि मुझे एक में सारी सृष्टि समाई हुई है, उस एक बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ। ज्ञान होना बात अलग है, और जो स्मृतियां आती हैं, जो हमको बाप की याद भुलाए देती हैं, वो बात अलग है। ज्ञान का विस्तार वो अलग बात है, और बीज रूप स्टेज में टिक जाना वो अलग बात है। बीज रूप में स्टेज में टिकी हुई आत्मा, उसमें 84 जन्मों की स्मृति हो सकती है। तो जो 84 जन्मों की स्मृति, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम विस्तार में पहुंचे हुए हों तभी वो स्मृति हो। बीज रूप स्टेज में वो स्मृति मध्य रूप में रहेगी। तो अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। क्या बात, ये हमारा अंतिम जन्म। अब इसके बाद इस पुरानी दुनिया में हमारा कोई जन्म होने वाला नहीं है। जब इस दुनिया में पुराना जन्म, पुरानी दुनिया में कोई जन्म ही नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है कि अब जितने भी पूर्व जन्म के संबंधी हैं उनसे हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। तो जिनकी बुद्धि में ये निश्चय बैठा हुआ है ये अंतिम जन्म है, उन्हीं के चुकतू होंगे। और जिनको इस बात पर निश्चय नहीं है, तो उनके चुकतू भी नहीं। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, ये देह तो खलास हो जाने कहावत भी है, आप मुझे मर गई दुनिया, देह तो खलास हो जाएगी। तो ये दुनिया कैसे खलास हो? दुनिया खलास करने के लिए कोई एटम बम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सहज उपाय बताया। क्या उपाय बताया? जी से जी मर जाओ। इस दुनिया की स्मृति से मर जाओ, तो जैसे दुनिया खलास होगी, आप मुए हम पुरानी दुनिया की त्रुटियों से मर गए तो जैसे पुरानी दुनिया से पूरा वैराग आ गया तो हमारे लिए दुनिया खलास हो गई। तो बोला ये देह भी खलास हो जानी है, जिसके लिए गायन है आप मुए तो मर गई दुनिया। तो देह खलास क्या ब्रह्मा सरस्वती की तरह हो जानी? नहीं, देह खलास होने का मतलब है देहवान समाप्त हो जाए, अपनी देह की इतनी ही ना आए। देह की स्मृति का क्या प्रूफ? ये देह का भरण पोषण कैसे होगा? अगर ये बुद्धि में बात चलती है तो इसका मतलब देह का भान है। जिसकी बुद्धि में ये बात आएगी ही नहीं, इस देह का भरण पोषण कैसे होगा? तो वो साथ में लगेगा, अपने रथ की सेवा के लिए कार्य करेगा या परमार्थ के लिए कार्य करेगा? जिसकी बुद्धि में ये बात आएगी ही नहीं क्या कि देह का भरण पोषण कैसे करना है, तो वो स्वार्थ में लगेगा या परमार्थ के कार्य में लगेगा? परमार्थ में लगेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में स्मृति ही नहीं आती कि ये देह का भरण पोषण कैसे होगा। उसको पक्का निश्चय हुआ पड़ा है कि परमात्मा बाप आया हुआ है, गारंटी ले रहा है, जो मेरी सर्विस करेंगे वो बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो जब बाप ने गारंटी दे दी, हम बाप की सर्विस करने वाले सेवाधारी हो गए, हम बाप की नौकर हो गए, बंदे हो गए। तो जो बाप के बंदे हैं वो भूख मर सकते हैं क्या? फिर पेट के लिए धंधे करेंगे क्या? अपने बच्चों के पेट के लिए धंधे करेंगे क्या? अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी देह का भान है जरूर। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया, ये देह तो खलास होनी ही है। कहावत भी आप मुए मर गई दुनिया, ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जैसे बड़ी भारी कोई मुसीबत आई हुई है, जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक ये ज्ञान सुनाते ही रहेंगे। कब तक चलेगा? जब तक दैवी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक ये ज्ञान चलता रहेगा। मानो जब तक इस पुरानी दुनिया की स्मृतियों में जी रहे हो तब तक, जब तक जीना है तब तक पीना है। ये ज्ञान जल भी पीना कब तक होगा? ज्ञान जल की दरकार भी कब तक है? जन्म अंतर तक, मतलब स्वर्ग की दुनिया में पहुंचना ही नहीं, जाना ही नहीं है, है? ऐसे थोड़े ही। जब हम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे फिर इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहेगी। ज्ञान को जल कहा जाता है, जल की दरकार ही होती है मैले कपड़े को धोने के लिए। जितना ज्यादा कपड़ा गंदा है उतना ही ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान जल की भी आवश्यकता कब तक? जब तक आत्मा और शरीर पावन नहीं बनता, उसमें भी आत्मा के लिए ज्ञान जल की जरूरत है। आत्मा पवित्र हुई तो अपनी राजधानी का अनुभव करने लग पड़ेगी, पुरानी दुनिया भूल जाएगी तो ज्ञान की भी दरकार नहीं रहे, ज्ञान भी भूल जाएंगे। तो जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक बाप तुम्हें ये ज्ञान सुनाते ही रहेंगे। इंसान पूरा होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा कहां? तुम्हारी परीक्षा पूरी होगी और तुम ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है
یہ کچھ نہ کچھ کب تک ہوگا؟ جب تک ہمارے راجدھانی میں نہیں پہنچتے. پرانی دنیا بھولتی نہیں ہے پوری. یہ شاریرک روگ بھی کرم بھوگ ہیں. ان جنوں کا کرم کرموں کا حساب کتاب ہے. تو جب تک وہ حساب کتاب چکتو نہیں ہوا ہے تب تک یہ شریر کے کرم بھوگ بھی آتے رہیں. کرماتیت اوستھا ہوگی تو یہ شریر کے کرم بھوگ بھی خلاص ہو جائیں گے. بابا کا یہ شریر کتنا پریہ ہے تو بھی دیکھو ان کو کھانسی آدھی ہوتی رہتی ہے. یہ بھی کرم ہو گئے نا. کس کا؟ برہما کا بولا. برہما بابا کو کھانسی ہوتی تھی تو بابا کا پریہ شریر ہے. کون سے بابا کا؟ کیوں بابا کا؟ برہما بھی بابا ہے کیونکہ وردھ شریر ہے. وردھ شریر کو بابا کہا جاتا ہے. پھر شیو بابا, شیو نراکار جیوتی بندو کا نام, اور وہ ساکار شریر دادا لکھراج میں پرویش کیا تو شیو بابا ہوں. تو بابا کا یہ شریر کتنا پریہ ہے. تو بھی کھانسی آدھی ہوتی ہے تو یہ کرم بھوگ ہوا نا. لیکن ابھی تو اجت بانی میں یہ بولا ہوا ہے کہ باپ دادا کرم اتیتے ہیں, کرم کے بندھن سے پرے ہیں, چاہے تو واپس جا سکتے ہیں. لیکن واپس کیوں نہیں جاتے؟ کارن کیا؟ سپنا پوری نہیں ہوئی نہیں, بچوں کو ساتھ لے کر کے جانا ہے. تو بچوں کے ساتھ لے کر کے جب جانا ہے تو بچوں کا کرم بندھن بھی سنگ کے رنگ سے باپ کو اپنانا پڑتا ہے. کیسے اپنائے گا؟ وہ سپریم کورٹ کو اپنائے گا نہیں. اس کا تو حساب کتاب کوئی لین دین ہے ہی نہیں کرنے کا. کسی آپنا کے ساتھ حساب کتاب کس کا ہے؟ رام کرشن کی آتماؤں کا, جن کے ساکار شریر کا آدھار لیتا ہے سپریم کورٹ. تو وہ آتماؤں کا سنگ کا رنگ دھارن کرتا ہے اور یاد کی اسٹیج سے اس سنگ کے رنگ کو خلاص کر دیتا ہے. بچوں کو شکتی مل جاتی ہے, پاور آ جاتی ہے. تو یہ بات بتائی کہ یہ شریر بابا کو کتنا پریہ ہے. جس میں پرویش کرتے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا رہتا ہے. تو ان کو کرم بھوگ کیوں آتا ہے؟ باپ دادا کو کرم بھوگ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بچوں کو ساتھ لے جانے کا باپ دادا کا بھی پارٹ ہوتا ہوا ہے. بچوں کے بغیر اکیلے واپس نہیں جا سکتے. جانا چاہیں تو اکیلے جا سکتے ہیں لیکن اس لیے کہ بندھن میں باندھے ہوئے تو ان کو بھی یہ کرم ہوگا. بابا کہتے ہیں یہ تمہارے آرگن سے پرانے ہو گئے اس لیے تم کو تکلیف ہوتی ہے. اس میں بابا مدد کریں. یہ تم بچوں کو امید نہیں رکھنی چاہیے. امید کیا رکھنی چاہیے؟ کہ ہم اپنے پرسار سے اپنے کرم بھوگوں کو خلاص کر دیں. بابا کے اوپر بدن کیوں بنے؟ تو بابا ہم کو مدد کرے ہمارے کرم بھوگ کو خلاص کرنے میں. یہ امید رکھنے والی کمزور آتمائیں ہوئی یا پاورفل آتمائیں ہوئی؟ وہ تو کمزور آتما ہوگی. یہ امید نہیں رکھنی چاہیے. دلالا نکلا, بیمار ہوا, باپ کہیں گے یہ تمہارا حساب کتاب ہے. ہاں پھر بھی یوگ سے آئے بڑھے گی. हमें कोई फायदा होगा? अपनी मेहनत करो, कथा नहीं मांगो कि बाबा हमारा ये कर्म बंधन ठीक हो जाए। बात की याद नहीं कल्याण है, मांगने में कल्याण नहीं। जितना हो सके योग बल से काम लेते रहो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहा जाता है। ये बात तो बहुत प्रिय है, परंतु ये है गुप्त, इसलिए बच्चों का लव पूरा नहीं ठहरता। अगर प्रत्यक्ष होता तो ही होता, शो करने वाला, तो बच्चों का भी लव ठहर जाता। लेकिन बात है कैसा, गुप्त है, इसलिए बच्चों का लव ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो उसकी बात मत पूछे। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछे। पलकें कोई ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है। ये हमको ज्ञान कौन दे रहे हैं? जैसे मुरली में बोलते हैं, मैं तुम बच्चों को पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो क्या इन पलकों की बात है? ये झूल पलकों की बात है क्या? बुद्धि की बात। जो सर्वसरल बच्चे होते हैं, बाप उन बच्चों को स्वतः ही याद करते हैं। तो जैसे बाप की पलकों में वो बच्चे छिपे हुए, हर समय बाप की छत छाया उन बच्चों के ऊपर रहती है, तो बुद्धियों की बात है। ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं? मोस्ट बिलवड निराकार बाप, जिसकी हम महिमा करते हैं। महिमा कर्तव्य के आधार पर होती है कि बिना कर्तव्य किए ये महिमा हो जाती है? महिमा तो कर्तव्य के आधार पर ही होती है, और कर्तव्य कर्मेंद्रियों से ही किया जाएगा तब महिमा होगी। तो वो निराकार हुआ या साकार हुआ है? लेकिन यहां क्या बोला, मोक्ष दिलवत निराकार बाप जिसकी ही महिमा है। फिर ऐसा क्यों कहा? निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदु है और बिंदु, वो बिंदु कोई फुदक फुदक के कोई कार्य संपन्न कर देता है। नहीं, वो किसी शरीर में प्रवेश करके कार्य को संपन्न करता है, करता भी करता है। जिसकी महिमा होती है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, लेकिन वो निराकार इसलिए कहा जाता है कि साकार शरीर में रहते हुए भी निराकार स्टेज में रहने वाला है। निराकार स्टेज माने निसंकल्प स्टेज। जिसके लिए बच्चों को भी डायरेक्शन दिया, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जैसे मेरा मन निसंकल्प स्टेज में रहने वाला है, तो भी उसी स्टेज में समा जाए। अति पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। पतितों को पावन बनाने वाला है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? जो पावन देवता है थे, वो पतित कैसे बने? किसी के संग के रंग से ही पतित बने ना। ऊपर से दूसरे धर्मों की आत्माएं आई और उनके संग के रंग में आने से भारतवासी पतित बने। तो संग के रंग के में आने से ही पतित बनते हैं, अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने। तो रावण बनने के लिए क्या किया जाए, उल्टा कर दिया जाए। अनेकों के संग के रंग में आने से, विचारी संग करने से पतित बने। तो जो एक सुप्रीम है उसको पहचान कर उसके संग के रंग में आने से हम पावन बनेंगे। तो मां ने कम याद करो, तो फिर सहजाति कैसे होगा? जब एक का ही संग करना है प्रैक्टिकल जीवन में, तो प्रैक्टिकल जीवन में जिसका हम संग करेंगे वो सर्वजाति होगा क्या? वो सर्वजाति तो साबित ही नहीं होता। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में अब आज क्या समझा जा रहा है कि वो परमपिता परमात्मा सर्वजाति है। जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बैठा हो सामने, तुम ऐसे समझो कि बाबा हमको